तो ये चीज जो ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पर सब फिर 5% 6% या जो भी 5% 10% जो भी हिट हो रहा है, ये कुछ दिनों तक भी लालच दिखा सकता है। सिर्फ एक दिन में ऊपर जाके नीचे ना गिरे, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, सब आर्टिफिशियल है।
आर्टिफिशियल है, ये भी हो सकता है।
पंटर लोग
हाँ
कहाँ
ये भी,
बैठे होते हैं ये लोग।
लेकिन ये जो सर्किट वाले शेयर है ना, जो रोज सर्किट लगा रहे, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए,
अच्छा, उनसे
क्योंकि
दूर है।
उसमें आप गेम में पहचान ही नहीं पाओगे कि क्या गेम चल रही है। आप ना अपर सर्किट में बेचोगे कि अपर सर्किट लग रहा है कि क्यों निकलूँ, अभी तो लगने दो, और जब लोअर सर्किट लगने लगेंगे तो आप निकल नहीं पाओगे,
अपर सर्किट में खरीद नहीं पाओगे, लोअर सर्किट में बेच नहीं
बेच नहीं
पाओगे।
पाओगे।
अपर
नहीं, आपके
सर्किट,
पास पोजीशन है, अपर सर्किट में आप बेचोगे नहीं, आपको लालच आएगा।
हाँ हाँ वही उसी लिए।
हाँ, और लोअर सर्किट निकल लगेगा तो आप निकल नहीं पाओगे। तो
खरीदने
ये
वाला ही कोई
रोज
नहीं
की
है।
सर्किट हो उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
ये 0-1 होता है, मतलब या तो इधर या उधर।
हाँ, ये बिल्कुल सर्किट वालों से तो दूर ही रहना चाहिए।
और ये एक्चुअल में कुछ लोग बैठे बस टाइम पास कर रहे हैं, खेल रहे हैं नंबर्स के साथ, कि कोई फंसेगा हमारी बहन दिखेगी उसको कि यहाँ कुछ ना
हाँ,
कुछ मूवमेंट है।
लोगों को तो जल्दी पैसा कमाना है, रोज सर्किट लगा रहे हैं, हमारा भी लगातार सर्किट लगते
और
रहेंगे,
जो
हम जल्दी
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, आपको लगता है कि उसमें ऐसी चीजें हो सकती
उसमें
हैं?
ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मार्केट कैप इतना बड़ा होता है, उसमें ये खेल हो ही नहीं सकते। आप रिलायंस में रोज करके देख लो, जितना मर्जी पंटर पैसा लगा ले, आप रिलायंस को हिला के दिखाओ,
रिलायंस तो खैर व्हेल मछली है, कहाँ है कम।
इंफोसिस को हिला के दिखाओ, सर्किट लगा के दिखाओ रोज।
उसमें लगा
तो
सर्किट,
स्मॉल कैप जो ऐसे शेयर होते हैं, ये सर्किट उसी में लग सकते हैं, मिड कैप के कुछ हो गए, लेकिन ज़्यादा तो स्मॉल कैप पैनी इसी में चल सकता है।
एक बिगनर स्विंग ट्रेडर को शुरू कहाँ से, मिड कैप से करना चाहिए, लार्ज कैप से करना
ये
चाहिए?
कॉन्फिडेंस किया आपके शुरू में, क्योंकि आपने सीखने का है, आपको उस टाइम पैसा नहीं कमाना, तो आप छोटे अमाउंट से, आप चाहे मिड कैप से, स्मॉल कैप से शुरू मत करो, चाहे मिड कैप से करो चाहे लार्ज कैप से करो, लेकिन उस टाइम रिटर्न की उम्मीद मत करो, आप सिर्फ सीखने के लिए ही जाओ
क्या,
उसमें।
क्या मैं सीख के आया? मैंने आज कोई चार्ट पैटर्न सीखा, 5-6 चार्ट पैटर्न सीख लिए मैंने, प्राइस एक्शन समझ में आ गया मेरे को थोड़ा बहुत, और मेरे को ये समझ में आ गया फंडामेंटल्स में 5 रेशियोज 6 रेशियोज देख ली मैंने, इंडस्ट्री का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। ये बहुत बेसिक है, इतना आना चाहिए
इतना
टू
तो
स्टार्ट विथ।
सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए आपको।
हाँ इतना कर दिया मैंने, अब मैं क्या मार्केट से उम्मीद करूंगा?
अब आप मार्केट से उम्मीद करोगे कि जो मैं अपने अमाउंट लगाया,
10,000
दस
लगाया।
हजार लगाया, अब आप ये तो भूल जाओ कि मेरे को पहले स्टार्टिंग में मेरे को सीखना है, मेरे को उसको रिटर्न का नहीं करना, मेरे को जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था मुझे 1,000 रुपये कमाना है, वो सोच गलत है। स्टार्टिंग में तो यही है कि आप जो पैसा लगाया कैपिटल, उसको प्रॉफिट लॉस का नहीं, उसको सीखने के ऊपर, जो मैंने मार्केट में पैसा डाला है उससे मैं सीख रहा हूँ या नहीं।
क्या मतलब, मैंने अगर ट्रेड मारा, मैंने ट्रेड मार दिया, 10,000 में से मैंने 2,000 का एक ट्रेड ले लिया, 5 शेयर बाय कर लिए, अब मैं क्या करूं?
उसमें आप अपनी जो आप ट्रेड हुआ है जो, उसको नोट करो कि आपकी गलती क्या हुई है, या अगर आपने पैसे कमाए हैं तो क्या लगातार
नहीं,
आप
अभी मैंने
ठीक कर
एंटर
रहे
किया
हैं।
सिर्फ, अभी मैंने कुछ एग्जिट नहीं किया है, लॉस या प्रॉफिट नहीं देखा, अभी मैंने बाय करके रख लिए, अब मैं क्या
आप
करूं?
उसकी मूवमेंट को रोज
फॉलो
ट्रैक
करो,
करो, उसकी मूवमेंट को,
रोज ट्रैक करो कि मैं सारा दिन बैठा रहूं?
नहीं सारा दिन बैठना है, वो तो आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको सारा दिन बैठने की जरूरत नहीं है उसकी, आप जैसे आपने लिया है रोज शाम को आके मूवमेंट देख सकते हो, जब ऑफिस आवर्स, अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस आवर्स के बाद आगे की मूवमेंट कैसे चली है उसकी, जो मैं सोच रहा था उसी हिसाब से मूवमेंट चल रही है, और अगर मैं जो सोच रहा था उसके अगेंस्ट चल रही है, तो फिर मैं क्या गलती क्या गलत सोच रहा हूँ, तो उसकी मूवमेंट को ट्रैक करो। जब आपको लगने लग जाएगा हाँ कि मेरी जो सोचता हूँ 7-8 बार, 10 में से 7-8 बार मेरी उसी हिसाब से चल रही है, तो आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं।
मेरे को स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस किस बेस पे सेट करना चाहिए उस 2,000 की ट्रेड के ऊपर?
तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अब मेरा है फेवरेट, जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं इनसाइड बार का के ऊपर करता हूँ ट्रेड। अब मुझको उसके अंदर दो कैंडल होती है, एक होती है मदर कैंडल, जैसे मान लीजिए एक बड़ी कैंडल बनी, उसका मान लीजिए लो है 90 और हाई है 100, उसको बोलती है मदर कैंडल। उसके बाद जो अगली कैंडल होती है उसको बोलते हैं बेबी कैंडल, जो उसके अंदर होती है, जैसे पहली कैपिटल कैंडल जो थी वो 90 से 100 के बीच
वो
में थी।
इतनी बड़ी थी मान
हाँ,
लो,
और दूसरी जो है वो मान लीजिए 92 to 97 हो गई,
उसी रेंज
90,
की।
हाँ उसके अंदर अंदर होनी चाहिए, जो पहली कैंडल थी 90 to 100 के, सेकेंड कैंडल जो है उसके अंदर ही होनी चाहिए, ना नीचे उसका लो ब्रेक करे ना उसका हाई ब्रेक करे, उसके अंदर अंदर हो, 91 to 99 हो गई। अब तीसरी जो कैंडल होती है, जिस तरफ भी उसका ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, अगर ऊपर आता है 100 क्रॉस करेगा तो मेरे को वहां पर एंट्री करनी है, और अगर तीसरे दिन या चौथे दिन 90 को ब्रेक कर देता है तो मेरे को उसमें शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है।
ओके, तो आप अभी इनसाइड बार के बेस पे देख रहे हो कि आपकी एक बड़ी कैंडल, पहले तो आपको कितने पॉइंट की बड़ी कैंडल चाहिए चाहिए जिससे आप शुरू करोगे अपना एनालिसिस?
जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना अच्छा है, जितनी रेंज बड़ी होगी।
ये कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होगा?
वन डे का यूज करता हूँ।
अच्छा, पूरे दिन का?
वन डे का।
पूरे दिन का अगर आपको एक बड़ा कैंडल मिल जाता है,
हाँ,
तो आप अगले दिन देखते हो कि मार्केट क्लोज,
पहले दिन मदर कैंडल बनी, दूसरे दिन बेबी कैंडल बनी। अब मेरी जो ट्रेडिंग कैंडल होगी वो थर्ड डे से स्टार्ट होती है, अगर थर्ड डे पे ब्रेकआउट आ जाता है तो मैं थर्ड डे करूंगा, फोर्थ डे पे आता है तो मैं
अब कोई और वैलिडेशन नहीं लोगे, कंफर्मेशन नहीं लोगे कहीं और चीज
पहले? वो तो उसके साथ बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे अगर जो आपकी ट्रेड ले रहे हो वो वाला शेयर जो है वो 50 मूविंग एवरेज से, 21 मूविंग एवरेज से, तो उससे ऊपर चल रहा हो, वो तो अलग क्राइटेरिया हो गया। लेकिन साइड बार में वैसे ये मैटर नहीं करता, मैटर जो करता है कि जो भी जिस तरह भी आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए आपने वहाँ पर पोजीशन लेनी है। और स्टॉप लॉस, जैसे अगर मान लो मैं लॉन्ग पोजीशन में जा रहा हूँ, 100 क्रॉस करेगा तो मैं वहाँ पर लूँगा, पहली कैंडल का जो हायर एंड था वो 100 था, मेरे को वहाँ पर लेनी है पोजीशन 100, जैसे ही तीसरे दिन क्रॉस की या चौथे दिन क्रॉस की मेरे को 100 पे एंट्री लेनी है। अब मेरा जो मदर कैंडल का लो था 90, उसको रख लेना है अपना स्टॉप लॉस, उसका जो लो था पहली कैंडल का। अब उसमें तो मेरा प्री डिफाइंड है स्टॉप लॉस,
वो तो आपको सामने से,
जैसे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन ले रहा हूँ तो जैसे 90 से नीचे गया मेरे को शॉर्ट पोजीशन, मैंने अपनी एक पोजीशन ले ली, उसका जो स्टॉप लॉस रखा वो 100 जो उसका हाई प्राइस था
कैंडल का। तो आपका मदर कैंडल, आपका सपोर्ट और सॉरी आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, सॉरी सिर्फ स्टॉप लॉस, सिर्फ स्टॉप लॉस डिसाइड करती है। तो चाइल्ड कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दी एक तरीके से कि अब आपको वेट करना है कि अगले दिन कहाँ से खुलती है मार्केट। अच्छा, अगले दिन अगर और छोटी कैंडल बनी तो
वो एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है शेयर, तो जितना उल्टा जितना कंसोलिडेट, मान लो तीसरे दिन भी उसके अंदर बनती है, चौथे दिन भी उसके अंदर बनती है, तो इसका मतलब शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। जितना कंसोलिडेशन होगा जब उसका ब्रेकआउट होगा चाहे ऊपर या नीचे, वो उतना बड़ा रिटर्न देगा,
उतना कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड मार पाओगे उस केस में। तो यू शुड वेट कि एक्चुअल में कैंडल अगर बनता जा रहा है अगर छोटा, तो यू शुड वेट के ऊपर या नीचे, ये ऊपर या नीचे सबसे छोटे जो चाइल्ड होगा उसको ब्रेक करना है उसने, या जो मदर को,
से बड़ी जो
कैंडल ब्रेक करेगा,
मदर को ब्रेक करेगा।
अच्छा, 100 और 90 जब टच हो गया, क्रॉस हो गया,
तब पोजीशन लेनी,
तब पोजीशन लेना, डिपेंडिंग कि उसने चाइल्ड जितने मर्जी बनाए,
हाँ वो उसके अंदर जितनी
वो स्टॉप लॉस दे देगा, आपको शॉर्ट लेना है या लॉन्ग लेना है।
अब इसके अंदर एक और है चीज कि जैसे मान लीजिए तीसरे दिन ही मार्केट खुली, मैंने तो देख लिया, स्क्रीनर लगा रखा था कौन से इनसाइड बार बनी है, अब मेरे को तीसरे दिन देखना है कि मार्केट अब खुलती, मान लीजिए मैंने 100 का रखा हुआ था, 100 से ऊपर जैसे ही जाएगा मैं पोजीशन ले लूँगा। अब कई बार क्या होता है, हमने पूरी जितनी क्वांटिटी उठानी थी उठा ली, 101 के ऊपर आ गए, क्योंकि अगर क्लोज नहीं हुआ 101 के ऊपर, हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखना होता है, और एक बार तो 101 102 गया, उसके बाद जब क्लोज हुआ वो दोबारा 95 पे क्लोज हो गया,
तो चाइल्ड कैंडल ही हुई है,
वो चाइल्ड कैंडल हो गई। तो इसलिए हमें वैसे क्लोजिंग बेसिस पे, अब मेरी टेक्निक क्या है, मैं आधी पोजीशन ले लेता हूँ, जैसे ही 100 क्रॉस किया आधी पोजीशन मैंने वहां पर ली,
अच्छा,
और आधी फिर मैं लेता हूँ जब वो क्लोजिंग भी उसके ऊपर कर रहा होता है, ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए।
नहीं, बट आप एंटर कर जाते हो आधी पोजीशन लेके,
आधी पोजीशन लेके
क्लोज नहीं हुआ है उसके बियॉन्ड?
हाँ, क्योंकि ये चीज ऐसी है, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होता है ना तो आपको घुसने का भी टाइम नहीं मिलता, 10-10, 15-15% वो, क्योंकि मोमेंटम होता है उस टाइम। अब आप क्लोजिंग का वेट करोगे तो 15% तो बढ़ गया पहले ही, तो आप कब एंट्री करोगे, तब तक तो आपका टारगेट ही आ जाता है 15%।
मैं एक नॉर्मल स्टॉक की बात करता हूँ, मान लो कि रिलायंस, चलो छोड़ो, कोई BSE का स्टॉक उठाते हैं।
मैं अभी बताता हूँ, अभी मेरी लास्ट थर्सडे को ही शेमारू वाला स्टॉक था,
शेमारू वाला,
ठीक है, वो काफ़ी 3-4 महीने से कंसोलिडेट भी कर रहा था शेयर, इनसाइड बार भी बनाया उसने। अब उसका रेंज जो थी वो 194 थी हायर एंड, और लो थी 175 मदर कैंडल की पहले,
19 पॉइंट का मिल गया,
19 पॉइंट का। दूसरे दिन उसके अंदर बेबी कैंडल बनी, वो बनी 179 से 192 ऐसे कुछ बनी,
13 पॉइंट हो गए।
हाँ, तीसरे दिन जब वो ब्रेकआउट हुआ, अगर मैं क्लोजिंग का उसका वेट करता है कि 194 से उसके ऊपर की क्लोजिंग आए, तो उस दिन तो उसका 20% अपर सर्किट ही लग गया, तो मैं पोजीशन कब लेता? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले 194 जो उसका अपर एंड है उसको वो क्रॉस किया तो 50% पोजीशन बना ली,
चाहे वो तीसरे दिन सुबह 11 बजे ही हो जाए,
चाहे 9:15 ही हो जाए, खुलते ही मार्केट हो जाए, मैं आधी पोजीशन, आधी पोजीशन मैंने बना ली 50%।
मान लो कि आपने 50,000 रुपए डाल दिए लाख में से,
हाँ,
अब
उसकी मैं क्लोजिंग की वेट करूंगा,
ठीक है। मान लो कि क्लोजिंग चाइल्ड कैंडल ने बना दिया, क्लोजिंग वो चाइल्ड कैंडल बन गई,
ऊपर 194 था उसके ऊपर ही क्लोज हुई, मान लो 199 पे क्लोज।
मैं कह रहा हूँ कि नहीं, चाइल्ड कैंडल बन गई।
अच्छा, वो चाइल्ड कैंडल बनी, वो क्रॉस नहीं किया,
180 पे रुक गई,
तो मैंने वो 50% ही जो वो क्वांटिटी ले रखी है उसको रखा,
एग्जिट नहीं किया,
एग्जिट नहीं किया। उसका स्टॉप लॉस तो मेरा जो लोअर एंड था 175 जो था, जब तक उसका नीचे वो नहीं करता, ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक मैं उसको पोजीशन को रखूँ।
आप इतना रिस्क लेने को ओके हो, क्योंकि व्हेन यू आर सीइंग के मार्केट,
क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऐसी है ना, क्योंकि इसमें बहुत तेज मोमेंटम आता है, मैं वो शेयर्स ही वही पिक करता हूँ जिसमें मोमेंटम है, क्योंकि मेरा मार्जिन में इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो मेरे को लेने ही वो शेयर है जिसमें मोमेंटम हो। अगर वो स्टक हो गए तो मेरा तो इंटरेस्ट जाता रहेगा, कंसोलिडेट हो रहा है 3-3, 4-4 महीने, मैं तो 3-4 महीने बिना बात के इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ।
आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते एमटीएफ के साथ,
एमटीएफ के साथ इन्वेस्टर नहीं बन सकते, हाँ।